चलते 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 आपस में खूब युद्ध करते करते इतना क्रोध बढ़ता है कि जो है राक्षस लोग बंदरों को पकड़ करके बंदरों पर ही फेंकते हैं और बंदर लोग भी राक्षसों को पकड़ करके राक्षसों पर ही फेंकते हैं। शिलाओं को लेकर शिलाओं पर फेंकते हैं, परिगों को लेकर परिगों को फेंकते हैं। जो राक्षस अपने हाथ में घोटा लेकर मरता है उस राक्षस से घोटा खोज करके बानर लोग राक्षसों का संहार करते हैं और जो बानर पर्वत शिखर लेकर आते हैं उनके टूटने पर बांदरी सेना नष्ट होती है। इस प्रकार से हयेन चाह्यम रथेन च रथम, घोड़े से घोड़ा रथ से रथ, वारणेन वारणम हाथी से हाथी, गुत्थम गुत्था होकर वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध के अंदर अब राक्षसी सेना अब दबती चली जा रही है। राक्षसों के और बानरों के खून से वो पृथ्वी देखी नहीं जा रही है। बानर लोग बानर बड़े भय को त्याग करके गर्वित होते चले जा रहे हैं क्योंकि अब राक्षसी सेना दब रही है। इस प्रकार से जब राक्षस लोग दबते हैं तब आकाश के देवतागण वगैरह सब आनंदित होते हैं और जब जब बांदर लोग दबते हैं तो वे सब बदलों के पीछे छिपे छिपे रहते हैं और इनका मन धड़क 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 धड़कता रहता है। इतने में ही वो नरांतक था, वो ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ सेना के बीच में घुस गया, अपने हाथ में बहुत बड़ा प्रास लेकर के और सेना का मर्दन करता हुआ बांदरों के अंदर चला गया। उसका घोड़ा भी बड़ा शीघ्रगामी था। विद्याधर और महर्षि आकाश में रहने वाले सब कांपने लगे और उसने वहां पर खून और मांस का कीच मचा दिया। उसका भी बड़ा भारी पराक्रम देख करके बांदर लोग हताश से होने लगे। ददा हरि सैन्यानी, बांदरों के सेना के अंदर उसने आग सी लगा दी है और बानर लोग जितने वो वृक्षों को उखाड़ते हैं उससे पहले तो उसका प्रास का प्रहार हो जाता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। जिस प्रकार से बरसात के अंदर कोई व्यक्ति कोई सामान लेने के लिए थोड़ा नीचे झुकता है उतने में खूब बरसात हो जाती है उस पर, ऐसे ही उनके ऊपर खूब जो है बाणों की वर्षा होने लगी बंदरों पर। बंदर बिचारे जो है भगने में भी उनकी मुश्किल हो गई, बंदरों का नाश होने लगा। उस समय में ये तो पूर्व महात्मा ने जिस समय में कुंभकर्ण ने बांदरों को घायल किया था वे बांदर इस समय में जी गए हैं, मतलब घायल अवस्था उनकी समाप्त हो गई, वे सावधान हो गए हैं और वे सुग्रीव को देखते देखते सामने नरांतक को देखते हैं तो सुग्रीव जोर से चिल्ला करके अंगद को बोलते हैं युवराज अंगद। वो सामने नरांतक बांदरों का संहार करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसको तत्काल उसको अपने प्राणों से अलग कर दो, ये राजा क्या है। ये सुनते ही अंगद ने देखा कि आओ उधर से मोर्चे में भोले भाले बांदरों को ये नरांतक मार रहा है, बहुत बड़ा पर्वत शिखर लेकर आया और आकर के वो बाली पुत्र अंगद कहने लगा ए नरांतक इन बिचारे बांदरों से लड़कर क्या करेगा, तुमको मरना है तो मेरे हाथ से मर ताकि तुझे कुछ कला तो मालूम चले और तुझे मरने में भी आनंद आए कि किसी योद्धा से मरा हो, आओ मेरे से युद्ध करो। नरांतक ने देखा कि आओ तो बाली का बेटा राम की सेना में मिला है, इस राम ने बाली को मारा और उस राम के पीछे हो गए, इसका मतलब तुमको अपने प्राण बहुत प्यारे हैं अंगद, नहीं तो तुमको भी बाली के साथ मर जाना चाहिए था और तुमको किष्कंधा छोड़ के अलग हो जाना चाहिए था, तुमको राम के साथ रहना नहीं चाहिए था। ठीक है उस समय तुम बच गए तो मैं तुमको मार करके आज बाली का काम तुम्हारा मैं पूरा करता हूँ। ऐसा करके नरांतक ने उसके ऊपर प्रास का प्रहार किया। अब जो है अंगद जो अपने हाथ में वही पर्वत शिखर लिया और पर्वत शिखर लेके उसके ऊपर उसने पटक दिया, उसने उसको खंडन कर दिया और फिर वज्र के समान कठोर उसके छाती के ऊपर उसने प्रास का प्रहार किया। अंगद थोड़े से घायल हुए, नीचे गिर गए और फिर अंगद ने ताल वृक्ष उखाड़ करके और उसको जोर से घुमाया, जोर से घुमा करके उसके घोड़े को मार दिया, सारथी को मार दिया और हतम तुरगम सारथी तो नहीं था उसका घोड़ा ही था, घोड़े को मार दिया। घोड़े को मारने के बाद फिर वो अपनी मुक्की उठाई और मुक्की उठा करके जोर से उछल करके अंगद ने जाकर उसका गला पकड़ लिया और उसका सांस बंद कर दिया, सिर के ऊपर मुक्का मारा, मुक्का मारते ही नरांतक का अंत हो गया। अंतरिक्ष में देवता लोग खूब तालियां बजाने लगे और वे दुंदुभियां बजाते बजाते कहने लगे कि वाह भाली पुत्र, तुमने आज नरांतक को मार करके बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। राम जी के पास ये खबर मिली कि नरांतक को मार दिया है तो राम जी महाराज ने अंगद को अपने छाती से लगाते हुए कहा, वाह बाली पुत्र, तुम तो बड़े वीर निकले, बहुत वीर थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो युद्ध थोड़ी समाप्त हो गया, पुनश्च युद्धे सबभूव हर्षित, फिर वो युद्ध होने लगा। अब जब नरांतक मर गया तो उसके साथ वाले देवांतक त्रिमूर्धा और महोदर और ये सब के सब जो है बाली पुत्र अंगद के पीछे पड़ गए। देखो ये बड़े बड़े महारथी बाली एक बाली पुत्र के पीछे पड़े हो तो बाली पुत्र भी इनमें कम नहीं था। अंगद ने खूब इनके साथ में युद्ध कर रहा था, वो तो था अपने शक्ति पर ही और ये थे अपने रथ पर, कोई हाथी पर। तीसरा तो रथ के ऊपर था ही, उसने अंगद के ऊपर प्रहार किया तीन बाणों से। उसने एक वृक्ष उखाड़ लिया, वृक्ष उखाड़ करके देवांतक के ऊपर प्रहार किया। तीसरा ने बीच में उसका जो है छेदन कर दिया, वृक्ष को काट दिया। अंगद देखता है कि देखो मेरे से लड़ने के लिए तीन आते हैं, अब मैं जिस एक पर प्रहार करूंगा तो बचाने के लिए दो आएंगे और ये तीनों मेरे साथ एक साथ प्रहार करेंगे तो इनको तो बचने के लिए मैं एक हूँ और मुझे अपने बचाने के लिए इन तीन से बचना है और मैं प्रहार करता हूँ तो इनके साथ दो जने और छुड़ाने के लिए हैं, कोई बात नहीं। अंगद का साहस कम नहीं हुआ, अंगद के ऊपर भी बाणों की वर्षा करने लगे और अंगद उनके ऊपर ही शिखर पटक पटक करके फेंकने लगे। महोदर था, उसने वृक्षों को काटना चालू किया। तीसरा ने अंगद के ऊपर बाण बरसाए। हाथी पर बैठा हुआ महोदर वह उस समय में अपने तोमर लेकर के और अंगद के ऊपर प्रहार करने लगा। देवांतक ने परिघ ले लिया, परिघ ले लिया। देखो महोदर और ये देवांतक और जो है तीसरा और देवांतक, ये चार हैं, चार में एक साथ हैं। उस समय में जो है वह अंगद इनके साथ लड़ता लड़ता भी किसी प्रकार से व्यथित नहीं हुआ। तो तलीन सम अभिद्रुत्य जघान अस्य महागजम, महोदर का जो बड़ा भारी हाथी था उस हाथी के ऊपर जोर से अंगद जी ने प्रहार किया, उस प्रहार के कारण से वो हाथी तो वहीं पर उसका खत्म हो गया। जो जो महोदर हाथी पर बैठा हुआ था वो महोदर अब पैदल पर आ गया और फिर जो है उस हाथी को मार करके और उसका दांत निकाल करके बाली पुत्र अंगद ने देवांतक के छाती पर प्रहार किया। छाती पर प्रहार करने से भाई अब वो देवांतक के छाती से खून निकलने लगा और वो जो है थोड़ी देर में बेहोश हो गया। आदित्य परिघम फिर उसने अपने हाथ में घोटा ले लिया, अंगद के ऊपर प्रहार किया और अंगद ने बच करके फिर उसके ऊपर प्रहार किया। हनुमान जी ने और नील ने देखा कि अरे अरे अकेला बहादुर चार चार महारथियों के बीच में है, अतएव हनुमान अथ विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतु, दोनों के दोनों उनके बीच में चले गए। नील ने तीसरा के ऊपर प्रहार किया और देवांतक का हनुमान जी के साथ में बड़ा भारी युद्ध हुआ। हनुमान और देवांतक आपस में युद्ध करने लगे। उस समय में भाई हनुमान जी महाराज की जो वज्र के समान मुक्कियां थी वो मुक्कियां उसके सिर के ऊपर प्रहार करने लगी और देवांतक का सिर फूट गया और देवांतक का वही अंत हो गया। तीसरा ने फिर नील के छाती के ऊपर प्रहार किया और महोदर था वो महोदर फिर उसने दूसरा हाथी ले लिया उसके ऊपर बैठ करके और उसने भी नील के ऊपर आक्रमण किया। अब नील दोनों राक्षसों से घिर गया पर नील भी कम नहीं था, बाणों की वर्षा से वह अपने को बचाता भी कुछ बाण खाता भी। अंत में भाई नील ने एक पर्वत शिखर उखाड़ करके और महोदर के सिर के ऊपर मारा और महोदर भी वहीं पर पूरा हो गया। और तीसरा और उठाया उसने पर्वत, वो पर्वत उठा करके तीसरा के ऊपर लगाया। इधर भाई हनुमान जी महाराज थे वो बड़े जो है क्रुद्ध हुए हुए वहां पर युद्ध कर रहे थे। हनुमान जी महाराज जब युद्ध कर रहे थे तो भाई उस समय में तृष्णा के ऊपर अभी आक्रमण किया था ना, तो तृष्णा के बाणों से पर्वत खंड नष्ट हो गया। तो हनुमान जी महाराज क्रुद्ध होकर खुद उसके ऊपर टूट पड़े, उसके घोड़े को और उनके सारथी को और उनके रथ को सबको हनुमान जी महाराज ने नष्ट कर दिया। अतः शक्तिम समासाद्य काल रात्रि मिवांतक है चिक्षेपा अनिल पुत्राय तृष्णा रावण आत्मज है। रावण पुत्र तृष्णा ने अपनी एक शक्ति जो प्राप्त की थी उस शक्ति को हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। वो उल्कापात जैसी महाशक्ति थी। हनुमान जी महाराज ने उस शक्ति को अपनी ओर आते देखा और देख करके दोनों हाथों से उस शक्ति को पकड़ लिया और पकड़ करके हनुमान जी ने उसने तोड़ दिया। जब वो शक्ति तोड़ दी तब वो तृष्णा तलवार लेकर के आया, हनुमान तुमने हमारी शक्ति का अपमान कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी शक्ति का इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा कि वो मेरे हाथ से टूट गई। बहुत बड़ा सम्मान किया है। अब जो है तृष्णा अपने हाथ में तलवार लेकर के आया है और तलवार लेकर के और जब वो हनुमान जी के सामने आया तब हनुमान जी महाराज ने उसके ऊपर प्रहार किया पर्वत का और पर्वत का प्रहार करने से वो नीचे पड़ गया। नीचे पड़ने से हनुमान जी महाराज उसकी तलवार खोस ली। तलवार खोसने के बाद वो बड़ा छटपटाया और वो फिर जो है अपने हाथ में दूसरा शस्त्र लेने लगा। हनुमान जी ने जाकर उसका गला पकड़ लिया और उसको वहीं पर धक्का देके नीचे पटक दिया। नीचे पटक के तलवार से उसका सिर काट दिया। एक काटा, दो काटा और तीनों काटे। तीनों सिर उसके काट दिए। बांदरों में बड़ी प्रसन्नता हो गई और इस प्रकार से भाई ये तृष्णा भी मारा गया। तृष्णा के मर जाने के बाद अब देवांतक और नरांतक और महापार्श्व तीन बचे हुए थे। नहीं नहीं, तृष्णा भी मर गया, महोदर भी मर गया, देवांतक नरांतक ये भी मर गए। अब ये महापार्श्व था। महापार्श्व अपने हाथ में गदा लेकर के आया और उसकी गदा तो थी ऐसी भाई जिसके ऊपर कई प्रकार की शूले लगी हुई। इसको शतकनी बोलते हैं। गदा के ऊपर बहुत लंबी लंबी शूले लगी हुई। किसी के ऊपर मारे तो गड़ जाए अंदर और गड़ जाए तो फिर वो तो मरा हुआ ही है। ऐसी वो गदा लेकर के आकर के बड़ा उसने वहां पर उत्पात मचाया। ऋषभ नाम का बानर था, वो उछल करके आकर के और उसकी गदा को छीन ली और भाई गदा को छीन करके उसके जोर से लात लगाई। लात लगा करके उसी गदा से उसके सिर के ऊपर जोर से प्रहार किया और बजाओ ताली और वो वहीं पर चुराव हो गया। इस प्रकार से भाई वो जो है महापार्श्व भी वहां पर मारा गया। ये सब मारे गए। अब जाकर के कौन क्या कहे। रावण से जाकर कहा कि महाराज बड़ा भारी युद्ध हुआ और उसमें आपके भेजे हुए आपके बेटा और आपके भाई सारे के सारे उस युद्ध के अंदर मर गए। जब ये बात देखी गई तो भाई रावण के मन में बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा कि ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज आपने अपने शस्त्र तो सारे काम ले लिए, एक शस्त्र और बाकी है उसको भी काम में ले लीजिए। वो शस्त्र कौन सा है। वो शस्त्र है संधि का शस्त्र, संधि कर लीजिए। रावण ने कहा कि अरे मेरे भाई मेरा परिवार सब मर गए, अब मैं संधि करूंगा। संधि का समय चला गया, अब संधि नहीं हो सकती। अब ये रावण किसी प्रकार संधि करने वाला नहीं। अतिकाय नाम के बानर ने कहा कि महाराज मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब वो रथ के अंदर बैठ गया और ब्रह्मा जी ने भाई उसको रथ के अंदर बड़ी शक्ति दी थी। उस रथ के अंदर जुटे हुए गधों को भी शक्ति दी थी और उसके शस्त्रों को भी शक्ति दी थी। इस प्रकार की शक्ति लेकर के और अतिकाय आया और अतिकाय जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम। वो अतिकाय के धनुष के बाणों में शक्ति थी। धनुष के टंकार के द्वारा बानर लोग डर गए और कुंभकर्णोयम बंदरों ने देखा रे तो कुंभकर्ण आ गया, कुंभकर्ण आ गया। इस प्रकार से बानर लोग सब भयभीत हो गए। अतिकाय को आया हुआ देखा तो राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, विभीषण ये सारे मानव जिसको देख करके डर रहे हैं, ये कौन सा महारथी आ गया, ये बहुत बलवान मालूम देता है। देखो इसका रथ, देखो इसकी शक्ति, देखो इसका धनुष, सब बड़ा विलक्षण मालूम देता है। तुम्हारी लंका में ऐसे ऐसे राक्षस रहते हैं पता ही नहीं है। देखो कितने बलवान राक्षस हैं। इन बंदरों को विचारों को सांत्वना तो दो और ये तो बताओ कि कौन है ये पर्वत के समान कोसव, ये कौन है और ये हजार हजार घोड़े जिसके रथ में और जो है दूसरे भी जिसके रथ में और अनेक प्रकार की सामग्रियां जिसके रथ में और तो खुद एक भूत ही रही महेश्वर है। भूत प्रेतों के बीच में जैसे महेश्वर भगवान शंकर है ऐसे ही इनके सामने मालूम देता है कौन है ये राक्षस तो है सब भूत और ये है शंकर जैसा। इसके पास में अद्भुत शक्ति मालूम देती है ये कौन है इसका जरा हमको भी तो परिचय बताओ। इसके पास में बड़ा विलक्षण सामर्थ्य मालूम देता है। देखो कितनी ऊंची इसकी ध्वजा है। ऐसा लगता है कि शायद ये राहु को छूने वाला है और सूर्य रश्मि प्रभेर बाणै दिशो दिश विराजयन सूर्य के समान कांति वाले बाणों से दसों दिशाओं को चमकीला बना रहा है और इसका धनुष है वो तीन जगह से टेढ़ा हुआ। देखो दो तो मुंह वाले और एक बीच वाला धनुष क्यों होता है। इस प्रकार से तीन जगह से झुका हुआ इसका धनुष बड़ा अच्छा है। सोने का बना हुआ मणिया इसमें जो है गठित की हुई है। बड़ा सुंदर इसके पास में धनुष है, पताका भी है और जो है मेघ के समान गर्जना करने वाले इसके पास में जो है योद्धागण भी है। विंशति च दश चाष्टौ च तूणाश्चिरथमाश्रिता तूणी रहे इसके पास 20, 10, 8, 38 तो इसके पास में तूणी रहे हैं जिसके अंदर कितने बाण भरे हुए हैं। दो इसके पास तलवारें लटकती भी दिखती हैं। इस प्रकार से सब प्रकार के इसके पास शस्त्र हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिसको ये चलाना नहीं जानता हो। धनुष बाण भी चलाना जानता है तो ये भाला भी फेंकना जानता है, तो ये तलवार भी फेंकना जानता है, ये परीक्षा भी लड़ना जानता है, गदाओं से भी लड़ना जानता है। बड़ा ये विलक्षण तुम्हारा ये पहलवान कौन है। तब विभीषण जी ने कहा कि महाराज इसका नाम जो है अतिकाय है और ये अतिकाय रावण का बेटा, रावण का पुत्र अतिकाय मेघनाथ का भाई। रावण की एक स्त्री है धान्यमाली, उस धान्यमालिनी का लड़का अतिकाय है। ये महाराज घोड़े पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके, पैदल में सब में ये बड़ा प्रवीण है। धनुष चलाने में, तलवार चलाने में, भाला चलाने में और नीति में भी सांत्वे दाने च नये मंत्रे भेदे साम दाम वन भेद और जो है संधि विग्रह यान आसन सब में बड़ा प्रवीण है। इसका नाम है जैसा अतिका है ऐसा ही इसका काम भी है। ब्रह्मा जी ने इसको बड़ा अच्छा वरदान दे रखा है कि तू कभी देवताओं से असुरों से कभी नहीं मरेगा, ऐसा इसको वरदान मिला हुआ है। और इसका ये कवच है, इसका जो रथ है ये महाराज सूर्य के समान चमकने वाला है। देवता लोग भी इसके सामने सहसा आते नहीं। वज्र के समान कठोर इसके बाण हैं, इनके बाणों को काटना भी बड़ा मुश्किल है। ये अतिकाय बाणा रावण का बेटा, देवदानों का अभिमान दूर करने वाला, ये बड़ी तेजी से हमारी सेना के अंदर बढ़ रहा है। अतः इसके साथ युद्ध करने के लिए अपने बांदरी सेना को तैयार रहना चाहिए और आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अतिकाय के समय में कब कैसा युद्ध कर दे इसका कुछ पता नहीं है। इतने में अतिकाय ने अपने धनुष के ऊपर बाण रखा, धनुष की पहले टंकार की फिर बाण रखा, बाण रख करके उसने बाणों की वर्षा करना चालू की। कुमुद है, विविध है, मैन है, नील है, शरभ है, ये सब के सब बानर पर्वतों को और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके एक साथ इसके ऊपर डालते हैं और ये त्रासद बाणों की ऐसी बरसात करता है वृक्षों को पर्वतों को और शिलाओं को एक साथ जो है तोड़ता चला जाता है। विद्यादि अभिमुखान संख्ये भीमकायो निशाचर, ये भीमकाय निशाचर सबका नाश कर रहा है। अतिकाय के सामने कोई बानर ठहर नहीं सके, बांदरों ने पूरी अपनी ताकत लगाई लेकिन बानर तो भाई अपनी ताकत लगा करके खाली रह गए। समय में उत्पत्ति रामम सधनु कलापि सगर्भितम वाक्यमिदम् बभाषे, राम के सामने खड़ा होकर राम को ललकारने लगा। रथे स्थितो हम सरसा बपावे न प्राकृतम कंचन योधयामि, यस्यादि शक्तिर व्यवसाय युक्तो ददा तुमे शीघ्र मे आद्य युद्धम। हे राम, पैदल खड़े हो तुम और मैं रथ के ऊपर हूँ, तुमसे क्या युद्ध करूंगा? तुम तो योद्धा नहीं हो, सामान्य योद्धा हो, मैं महायोद्धा हूँ। जिसके पास शक्ति हो मेरे से लड़ने की वो आओ और मेरे साथ में युद्ध करो। लेकिन तुम क्या युद्ध करोगे? तुम्हारा शरीर युद्ध का है ही नहीं, तुम्हारे लक्षण योद्धा के नहीं है, तुम्हारे लक्षण तो तपस्या के हैं। जाओ जंगल में बैठ बैठ तपस्या करो। इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी महाराज कुपित हो गए और कुपित होकर धनुष बाण लेकर के आए। अरे तू ललकारता है, हम तेरी बात का उत्तर देते हैं। अब आगे हनुमान जी महाराज बाण बरसा करने लगे। पहले हनुमान जी ने धनुष की टंकार की, ओ टंकार सुनी, समुद्र के अंदर रहने वाले जानवरों ने भी सुन ली। अब उसके बाद टंकार करने के बाद अतिकाय ने लक्ष्मण जी को देख करके कहा, ए लक्ष्मण तुम तो बालक हो, हटो यहाँ से, तुम क्यों हमारे साथ में युद्ध करते हो? और मैं काल के समान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ भाई अच्छा भी नहीं लगता, न तो तुम मेरे सामने अच्छे लगते हो न मैं तुम्हारे सामने खड़ा अच्छा लगता हूँ। मेरे सामने तुम मरोगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी, अपयश हो जाएगा। नहीं मत बाहु सृष्टाना मेरे द्वारा छोड़े हुए बाणों से भाई हिमालय भी टूट टूट हो जाता है, तुम क्या चीज हो लक्ष्मण? जाओ बच्चे हो, जाओ अपनी माँ की गोद में जाकर चुपचाप सो जाओ, थोड़ा माँ का सहलाना ले। अरे माँ जब सहलाती है बच्चे को तो बच्चे को बहुत आराम से नींद आती है। माँ की गोद में बच्चा सर्वथा निश्चिंत रहता है, कोई डर नहीं उसको। जाओ अपनी माँ के पास जाओ भाई, बच्चे हो तुम और मैं तुमको प्राण दान दे देता हूँ। तुम बच्चों को नहीं मारते, हम तो योद्धाओं को मारते। क्या बात है? न देवार्थी तुम इच्छसि, तुम लौटना नहीं चाहते हो, तुमको क्या प्राणों से मोह नहीं है? अच्छा अच्छा, भाई के दुख से तुम इतने दुखी हो गए कि तुम मरना चाहते हो। तुम सोचते हो कि सीता तो राम को हम वापिस मिलेगी नहीं और मैं राम को छोड़ सकता नहीं, राम के दुख से तुम दुखी होकर अब मरना चाहते हो। अच्छा अच्छा, तो भाई तुम्हारी इच्छा हम तो नहीं चाहते पूरी करें, लेकिन जब तुम मरने के लिए आए हो तो हमें तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसलिए अभी भी कहता हूँ कि मेरे सर के समान के बाणों से मत मरो और अलग हो जाओ। अतिकाय की अतिशयोक्ति पूर्ण बातें सुनकर के राजपुत्र लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, अरे भाई अतिकाय जी, कोई कहता है कि मैं सूरवीर हूँ, इतने में सूरवीर नहीं होता। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने पर आज तक तो कोई बड़ा हुआ नहीं, अब आप कैसे बड़े हो जाएंगे पता नहीं। आपके सामने मैं छोटा दिखता हूँ, छोटे की बात तो तब ठीक होगी जब ये आप बाण को समझोगे। आप बाण को देखिए, मेरी अवस्था को मत देखिए, मेरी शरीर की आकृति को मत देखिए, बाण को देख करके बोलूंगा। पौरुषेण यो यो सतसूरः इति स्मृतः, हमने तो सुना है कि जिसके बदन में ताकत होती है वही सूरवीर होता है, पौरुष दिखाए वो सूरवीर होता है। तो आओ अपने बातें न करें और ज्यादा समय न लगा करके अपने तो युद्ध करें। मैं अपने बाणों से क्या तुमको करके दिखाता हूँ तो मैं जानता हूँ, तुम भी अपने बाण छोड़ करके हमको बता दो। यदि हमको भागने की जरूरत होगी तो हम भाग जाएंगे और यदि हमें भगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम भगा देंगे, और यदि आप लंबी यात्रा ही करना चाहोगे तो हम आपको लंबी यात्रा करा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्यु जाने ही संयोग है। तो देखो भाई मृत्यु ये युद्ध होता है उसमें मृत्यु तो निश्चित होती है। उसमें बालक बूढ़ा जवान कुछ नहीं देखा जाता, वहां तो मौत देखी जाती है। अरे वो नरक मरने से पहले तुझे एक बात तो बता दूं कि तूने विष्णु की कथा सुनी कि नहीं। वो छोटा सा विष्णु वहां पर गया था और छोटा सा था लेकिन त्रिलोकी को नाप लिया था। तो दिखने में जो छोटा होता है वास्तव में वो शक्ति से कितना बड़ा होता है ये इन नेत्रों से पता नहीं चलता। लक्ष्मण की ठोस बातें सुनकर के अतिकाय के मन में क्रोध आया। उस समय में अतिकाय ने अपने धनुष के ऊपर बाण रख लिए और बाण रख करके अतिकाय जोर जोर से प्रहार करने लगा। उस समय में देवता गंधर्व और ऊपर रहने वाले जितने विद्याधर भूत देव ऋषि चारण गुह्यक ये सब उस युद्ध को देखने के लिए अपना अपना काम धंधा सब छोड़ करके चुपचाप आकर के युद्ध देख रहे हैं, क्योंकि अतिकाय बहुत बड़ा धनुर्धारी है और सामने लक्ष्मण जी हैं। दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अतिकाय ने अपने तीखे तीखे बाण लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़े तो लक्ष्मण जी ने टक 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 ऐसे करके सब बाणों को काट दिया। और काटते काटते फिर भाई उसने जो है लक्ष्मण जी ने अपनी तरफ से बाण और छोड़े। बाण छोड़े तो कुछ तो उसके ललाट पर लगे और कुछ उसके छाती में लगे, कुछ उसके पेट में लगे। तो उन बाणों से वो थोड़ा थोड़ा मूर्छित होने लगा। मूर्छित होकर के जब उसके घोड़े मर गए और वो स्वयं मूर्छित होने लगा तो मूर्छित होकर अरे लक्ष्मण तुम्हारे बाण तो बड़े अच्छे हैं रे, अरे भाव तो शत्रु का भी सराहा जाता है, तुम्हारे बाणों में बड़ी ताकत है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाणों की ताकत कहाँ है अतिकाय जी, मेरे बाण जब तक तुमको मारेंगे नहीं तब तक क्या ताकत है। इस प्रकार से घायल अवस्था में पड़ा हुआ अतिकाय अपने हाथ में बाण लिया हुआ फिर लक्ष्मण जी की तरफ बाण छोड़ता है। एक तीन पांच सात ऐसे लगातार बाण छोड़ता गया और लक्ष्मण जी महाराज अग्नि के समान प्रदीप्त बाणों को देख देख के काटते चले गए काटते चले गए। अब देखो लक्ष्मण जी काटते हैं और फिर जो है वो इंद्र शत्रु अतिकाय कुपित होकर के लक्ष्मण जी के ऊपर बाण चलाता। उससे पहले लक्ष्मण जी महाराज एक आग्नेयास्त्र लेते हैं। आग्नेयास्त्र लेते हैं वो आग्नेयास्त्र जलने वाला आग्नेयास्त्र। उस आग्नेयास्त्र को लेकर के अत्यंत तेजस्वी लक्ष्मण जी महाराज उस दैत्य की और बड़े कस करके लगाते हैं और वो दैत्य भी बहुत जानकार है वो सूर्यास्त्र फेंक देता है। लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र फेंका तो उसने सौर्यास्त्र फेंक दिया। दोनों अस्त्र आपस में लड़े बड़ी बड़ी भारी अग्नि पैदा हो गई। बड़ा बड़ा विस्फोट हो गया जैसे कोई दो बम बम आपस में लड़के फूटते हैं वैसे अग्नि 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 हो गई। फिर अतिकाय ने उस समय में काष्ठ बाण छोड़ा तो लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र छोड़ा तो रावण पुत्र अतिकाय ने याम्यास्त्र छोड़ा तो लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र छोड़ा। ऐसे व्यास्त्र छोड़ रहे हैं और रावण के बेटे अतिकाय पर लक्ष्मण जी महाराज पूर्ण रूप से क्रुद्ध होकर के और उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे बाणों की वर्षा करते करते लक्ष्मण जी महाराज उसके हजारों बाणों को सहन करते हैं और उसके कवच को तोड़ना चाहते हैं। अब उस कवच के ऊपर बाण पर बाण बाण पर बाण लगाते हैं। जहरीले बाण लक्ष्मण जी उसके कवच पर लगाते हैं लेकिन कवच टूटता नहीं। लक्ष्मण जी का सारा जोश सारा बल कवच को तोड़ने में लगा है लेकिन किसी प्रकार से वो कवच टूटा नहीं। उसके सारथी मारे गए घोड़े मारे गए रथ उसका चूर चूर हो गया। वो जितने में संभलता नहीं है इतने में ही वायु आकर चुपचाप लक्ष्मण के कान में कहती है। वायु बोलता है कहती नहीं कहता है वायु बोलनी वायु बोलता है ये लक्ष्मण इसके कवच को तुम तोड़ने का प्रयत्न मत करो। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है। ब्रह्मा जी के वरदान से इसका कवच तो कभी नहीं टूट सकता परंतु देखो ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी और किसी उपाय से मृत्यु नहीं होगी। इसके कवच की तरफ तुम कोई विचार मत करो और ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसके प्राण हर लो। जल्दी करो, अब इसकी मृत्यु का समय आ गया है। इतना कहकर वायु को अदृश्य हो गया। वायु के अदृश्य होने के बाद लक्ष्मण जी को खबर तो मिली गई, अपने धनुष के ऊपर बाण रखा और बाण बांध करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो सब जगह हाय त्राहि मच गई। आकाश में चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सब जो है कांपने लग गए। सब चराचर प्राणी कांपने लग गए और फिर जोर से जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र के छोड़ने से अतिकाय का जो सिर था वो उसके धड़ से अलग हो गया। देवताओं ने तालियां बजाई, खूब फूलों की वर्षा की, लक्ष्मण जी की बड़ी जय जयकार की और बड़े अच्छे स्वरों के अंदर लक्ष्मण जी का वहाँ उन्होंने गुणगान गाया और सब बड़े आनंद में डूब गए। बंदरों में भी बड़ा हर्ष हो गया। इधर रोते बीरते ये बेचारे निशाचर लंका के अंदर जाकर दुबक करके बैठ गए। प्रहर्ष युक्ता बहुवानरः प्रफुल्ल पद्म प्रतिमाननास्तदा अपूजयन् लक्ष्मणमिष्ट भागिनम् हतेरिपो भीम बले दुरासदे। इस प्रकार से भाई सबके मन में बड़ा हर्ष हो गया और कमल के समान जिनका मुख था वे वानर बहुत सुंदर मालूम देने लगे और वे लक्ष्मण जी महाराज के पास आए और उनकी बड़ी पूजा करने लगे। ऐसे उस महान शक्तिशाली अतिकाय के मरने के बाद लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वे राम जी के चरणों में जाकर प्रणाम किए और राम जी ने उसको बड़े प्रेम से छाती से लगाया।